मुनि विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी ग्रंथ के ध्यान दीप प्रकरण का 33वां श्लोक शायद हुआ था ना, 34वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 33वें श्लोक में एक प्रश्न आया था कि क्रमिक विचार चल रहा है। 32वें श्लोक में कहा कि जब तक साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान न हो जाए, व्यक्ति को बार 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 ब्रह्म का विचार करते रहना चाहिए। तभी फिर 33वें श्लोक में उठाया कि मान लो बार बार ब्रह्म विचार किया, बार बार किया, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो कहीं हमारा विचार व्यर्थ तो न चला जाए। जैसे गीता में अर्जुन को हुआ था कि महाराज इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, साधना करते रहे तो हमारी साधना का क्या होगा, इतना परिश्रम किया उसका क्या होगा। सेम वैसा ही प्रश्न है, भूयो भूयो विचारेण आपी है साक्षात कारा कार अनुदय सती विचारो व्यर्थ स्यात्। बार बार विचार करने पर भी यदि ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है तो फिर विचार करना तो व्यर्थ ही हो जाएगा, क्या अर्थ निकला विचार करने का। तब उसका उत्तर दिया गया था 33वें श्लोक में, विचार्यन नामरणम नैव आत्मानम लभेत चेत। कहते मृत्यु पर्यंत विचार करते हुए भी यदि उस परमात्मा को आत्मा रूप से अनुभव नहीं हुआ, नहीं जाना, प्राप्ति नहीं हुई, तो वो विचार व्यर्थ नहीं जाने वाला है। जन्मांतरे लभेत एव प्रतिबंध क्षय सती। आपने विचार में कोई कसर नहीं छोड़ी पर फिर भी ब्रह्म साक्षात्कार न हुआ, इसका अर्थ कोई न कोई रुकावट थी, कोई प्रतिबंध था। ब्रह्म साक्षात्कार में रुकावट हो सकती है, इसलिए जब वो रुकावट वो प्रतिबंध क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो जन्मांतरे आत्मानम लभेत एव। यूं ऊपर से लगा लो, जन्मांतर में उस परमात्मा को आत्मा रूप से प्राप्त कर ही लेंगे। इसका अर्थ है कि जो विचार है वो व्यर्थ नहीं जाता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महाराज रोज रोज वेदांत वेदांत वेदांत, पर अब तक हमारे भीतर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं है, यद्यपि अंतर तो जरूर आता है, लेकिन पूर्णतया न आया तो करते रहो करते रहो। यहीं पर एक माताजी आया करती थी, अभी तो कई साल से मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं, दुबले पतले से थे। प्रवचन के बाद में नीचे दूसरे माले पर संत निवास में आए और उनकी आंखों में पानी भर आया। महाराज कुछ पूछने की कहना चाहती हूं, तो मैंने समझा कि समय में के अनुसार सोचा मैंने कि हो सकता है बुजुर्ग शरीर है, परिवार में सेवा नहीं होती होगी, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कहो मां क्या परेशानी है। तो आंखों में पानी भरा हुआ और कहने लगी कि स्वामी जी सत्संग सुनते तो हैं पर जीवन में नहीं उतरता, कोई लाभ नहीं होता, इस बात का दुख है। सत्संग सुनते हैं पर लाभ नहीं होता। तो मैंने कहा मां आप कितने समय से सत्संग सुन रहे हैं। 7-8 वर्ष तो हो गए। तो मैंने कहा माताजी 7-8 वर्षों से आप नियमित सुनते। बोले हां। तो कुछ भी अंतर नहीं आया, आपकी मनस्थिति जो 8 वर्ष पूर्व थी आज वैसी की वैसी है, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मैंने तो ये जानने के लिए पूछा था कि कहीं प्रबल प्रतिबंध तो नहीं है जो कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा। वो थोड़ी गंभीर हुई और कहने लगी स्वामी जी थोड़ा तो हुआ है पर पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा थोड़ा कितना हुआ। बोले सत्संग में नहीं आती थी उसके पहले मेरे मन में अन्यों के प्रति राग भी था और द्वेष भी था, किसी से राग होता किसी से द्वेष होता था। अब सत्संग श्रवण करते करते द्वेष की भावना तो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। किससे द्वेष करें, द्वेष की भावना तो मेरी चली गई, पर महाराज मन से राग नहीं जाता है। मैंने कहा मां 7-8 वर्षों में आपने एक शत्रु को जीत लिया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छेत तो यस्य परिपंथिनो। विषयों के प्रति जो राग और द्वेष है साधक को सावधान रहना चाहिए कि उनके वश में ना हो, क्योंकि साधना में ये बहुत बड़े प्रतिबंधक है, ये रुकावट खड़ी करने वाले हैं। आपने तो एक दुश्मन को पछाड़ दिया, द्वेष को जीत लिया, तो अब राग भी समझ लो कि आप साधना करते रहो पिछड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट होगा। अब यदि व्यक्ति साधना सत्संग करते 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 उससे कंठाल जाए ऊब जाए तो फिर उसको तो शत्रु को जीतने के और सफलता मिल गई, वो तो और मजबूत हो जाएगा, उसके तो और हौसले बुलंद हो जाएंगे। इसलिए साधक को निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। यदि प्रतिबल प्रतिबंध प्रबल नहीं है तो इसी जीवन में ज्ञान हो जाएगा, और कदाचित यदि प्रतिबंध बड़ा प्रबल है तो जन्मांतरे लभेत एव, जन्मांतर में परमात्मा को आत्मा रूप से साक्षात्कार कर लेगा, ये विचार उसका व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात सिद्ध की गई। नमो इदम कुत अवगमम अवगतम इति आशंक्य ब्रह्मसूत्र कर्ता व्यासेन अहिकम अप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात् इति अस्मिन् सूत्रे अभिधानात् इति आह। अब कहते हैं कि आप कहते हो विचार करते रहो जन्मांतर में हो जाएगा, पर कौन से जन्म में होगा महाराज, उसकी भी कोई सीमा है कब होगा, और क्या जन्मांतर में ही फिर जाकर के होगा? ये जीवन केवल विचार करने के लिए ही है, यहां परमात्मा रूप से साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा ही नहीं। तब वहां पर व्यासजी महाराज के द्वारा प्रणीत जो ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है उसको उद्धृत कर रहे हैं कि यह भी कोई नियम नहीं है कि ज्ञान जन्मांतर में जाकर के ही होगा, यहां साधना करो, और यह भी नियम नहीं है कि ज्ञान तुमको यहीं होगा जन्मांतर में नहीं होगा, यह कोई नियम नहीं है। ज्ञान अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, इस वर्ष में भी हो सकता है, अगले वर्ष में भी हो सकता है, ज्ञान इस जीवन में भी हो सकता है अगले जीवन में जाकर के भी हो। यह भी जरूरी नहीं कि आने वाले जीवन में ही हो जाए, कहीं उसके बाद में जाकर के हो। ज्ञान की तिथि समय निर्धारित नहीं है, लेकिन साधना का स्थान निर्धारित है, विचार का स्थान निर्धारित है। हम कहें कि ज्ञान वहां जाकर के होगा तो वहां जाकर के विचार कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विचार करने का अवसर तो यही है। इसलिए विचार तो इस जीवन में निरंतर करना है, ब्रह्मचिंतन तो यहां करना है, मीमांसा तो यहां करनी है, खूब विचार करो। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य की जो पद्धति है उसका खूब चिंतन होना चाहिए। ज्ञान कहीं भी हो सकता है। व्यास जी महाराज ने सूत्र लिखा है अहेकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्। अहेकम अपि, वहां प्रश्न खड़ा हुआ था कि ज्ञान यहीं पर होगा या अन्यत्र अन्य जन्म में जाकर के होगा, तो व्यास जी कहने लगे कि अहेकम अपि, यहां पर भी हो सकता है। अहेकम अपि, ज्ञान यहां भी हो सकता है, इसी जीवन में भी हो सकता है। कब? अप्रस्तुत प्रतिबंधे, यदि उसके ज्ञान में कोई प्रतिबंध नहीं है तो ज्ञान यही हो सकता है, और यदि प्रतिबंध है तो इस जीवन में नहीं भी हो सकता है। तो फिर कब होगा? जन्मांतर में होगा। इसमें क्या प्रमाण है महाराज, जन्मांतर में ज्ञान होगा? तो व्यास जी कहते हैं शास्त्र प्रमाण है, तद दर्शनार्थ ऐसा देखा गया। कहां देखा गया? श्रुति में देखा गया है। वामदेव ऋषि को ज्ञान हुआ। वामदेव ऋषि मातृ गर्भ में थे और मातृ गर्भ में ही वो ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कोई बाज पक्षी होता है, शयन पक्षी। बाज पक्षी की एक विशेषता होती है, उसको आप पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते। जैसे कबूतर आदि को जाल में फंसा लेते हैं, बाज पक्षी को आप जाल में नहीं फंसा सकते। उसकी चोंच में वो शक्ति होती है कि जिस जाल में पिंजरे में फंसा दिया जाता है उसको काट करके वो फ्री हो जाएगा, उड़ जाएगा। अन्य पक्षी जाल में फंस गए तो फंस गए, पर बाज पक्षी जाल को काट करके मुक्त हो जाता है। वामदेव ऋषि ने उदाहरण दिया माता के गर्भ में रहते हुए कि जिस प्रकार से एक शयन पक्षी जाल को काट करके मुक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी सारे अज्ञान बंधनों को काट करके और आज ब्रह्म रूप से अनुभव कर रहा हूं, सारे बंधनों का भेदन कर दिया है। वो स्वयं अपने को मुक्त रूप से अनुभव करता है। तैतरीय श्रुति में आखिर में देखना, वामदेव ऋषि अपना अनुभव सुनाता है। तो यहां कहते हैं तद दर्शनात्, ये दर्शन शब्द बता रहा है। चाहे तो हम लोग पौराणिक प्रसंग को भी उपस्थित कर सकते हैं, राजर्षि भरत को ले सकते हैं, तीन जन्म के बाद जाकर के उनको वो स्थिति प्राप्त हुई है, साधना का फल प्राप्त हुआ है। लेकिन यहां पर तद दर्शनात् जो व्यास जी ने सूत्र में शब्द दिया है, दर्शन शब्द श्रुति के लिए ही आता है, क्योंकि श्रुति आंख है। वेदश चक्षु, वेद को चक्षु बताया है। अतीन्द्रियार्थ प्रतिपत्तो न प्रमाणम, हमारे लिए अतीन्द्रिय परमात्म तत्व की प्राप्ति में एकमात्र वेद ही प्रमाण है, वही चक्षु है, वही आंख है। इसलिए श्रुति प्रमाण जहां कहीं दिया जाता है वहां दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं व्यास जी महाराज। दर्शन तो किसको कहते हैं? जिसको आंख से देखते हैं। तो एक आंख तो हमारी ये देखती है और दूसरी एक वो शास्त्र आंख है, श्रुति वेद आंख है। वो किसकी आंख है? वो परमात्मा की आंख है, वो सत्य की आंख है, वो यथार्थ बताने वाली आंख है, जो आंख कभी झूठ नहीं बोल सकती और जिस आंख का देखा हुआ कभी झूठा नहीं हो सकता। वो सत्य दृष्टि वेद दृष्टि बता रही है कि एकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे, ज्ञान यहीं भी हो सकता है यदि प्रतिबंध प्रस्तुत नहीं है। तो प्रतिबंध सामने नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई, तो ज्ञान यहां भी हो सकता है। इति अस्मिन् सूत्रे अभिधानाद इति आह, इस प्रकार इस सूत्र में जो कहा गया है उसके आधार पर ये अगला श्लोक यहां पर कहा जा रहा है कि कुत अवगतम इदम, वो ज्ञान कैसे अवगत होगा, कब प्राप्त होगा, कहां होगा, होगा यहां कि नहीं होगा। बोले उसमें शास्त्र का निर्णय सुन लो, वेद का निर्णय, उपनिषद का निर्णय, व्यास जी का निर्णय और यहां पर विद्यारण्य स्वामी का निर्णय, ग्रंथकार का निर्णय सुन। 34वें श्लोक का उच्चारण करें, प्रसंग बहुत सुंदर है। इह वा मोत्र वा विद्येत एवं सूत्रकृतोदिताम् श्रणवन्तोऽप्यत्र बहवः यन्न विद्योरिति श्रुतिः। इह वा अमोत्र वा विद्येत, विद्यति एवं सूत्रकृतोदितम्, श्रवंतोपि अत्र बहुओ या न विद्युरिति श्रुति ही। कहते हैं कि यह वा अमूत्र वा विद्यत, ज्ञान यह अर्थात अस्मिन् मनुष्य देहे, इस मनुष्य शरीर में यहां ही प्राप्त हो सकता है, अथवा वा अमूत्र या फिर आगे जन्मांतर में जाकर के हो सकता है। दो बार वा या फिर अमूत्र वा, यह वा अमूत्र वा, यहां अथवा वा इस जीवन में हो सकता, नहीं तो अगले जीवन में हो सकता, कहा आने वाले जीवन में तो पक्का है ना, तो फिर वा लगा दिया, अथवा हो सकता उससे भी अगले जीवन में हो। जन्मांतर का भी यह नहीं कि इस जीवन के बाद में जो शरीर मिलेगा वह ज्ञान हो ही जाएगा, प्रतिबंध वहां भी खड़ा है तो नहीं भी हो। इस प्रकार से सूत्रकर्तो उदितम, सूत्रकर्ता ने ऐसा कहा है, ऐसा निश्चय किया है, उसके द्वारा यह रहस्य प्रकट किया गया है। सूत्रकर्ता कौन है? व्यास जी महाराज। यही जो ऊपर का सूत्र है अभी टीकाकार ने जिसको स्मरण किया है, अहेकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्, यही भी ज्ञान हो सकता है कोई प्रतिबंध प्रस्तुत न हो तो, ऐसा देखा गया है। कहां देखा गया है? वामदेव का उदाहरण वहां पर दिया गया है ब्रह्मसूत्र के अंदर। यहां एक बड़ा सुंदर और उदाहरण दे रही है श्रुति। श्रवंतोपि अत्र बहुओ यत् न विद्युरिति श्रुति ही। कठोर श्रुति है और मुंडक श्रुति में भी यह मंत्र आया, दो जगह आया है। बहुत सुंदर मंत्र है कि श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, श्रवंतोपि बहुओ यम न विद्यु, आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। यह मंत्र है पूरा, कठोर श्रुति का भी है मुंडक श्रुति का भी है। श्रवणाया भी बहुबीर यो न लभ्य है, बहुत सारे लोग हैं जिनको यह ब्रह्म विचार श्रवण करने को ही नहीं मिलता। ब्रह्म है, ब्रह्म तुम्हारी आत्मा है, ये वेदांत ये उपनिषद विद्या श्रवण करने का अवसर ही नहीं मिलता। कितने लोग हैं भाई है? हमें तो अपने आप की पीठ थपथपानी चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली लोग हैं है? ब्रह्मलीन महाराज जी का कितना एक सत्य संकल्प होगा, शुभ संकल्प होगा, जिनके मन में आया कि माया नगरी को ब्रह्म नगरी बना दिया जाए। प्रेमपुरी जी महाराज को कितना पवित्र संकल्प हुआ होगा, और चूंकि साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे और ब्रह्म सदैव सत्य संकल्प होता है, यह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की पहचान है। देखो आप, जो उनका एक संकल्प निकला होगा, उस शरीर से भले उस संकल्प को उन्होंने पूरा न किया हो, पर चूंकि ब्रह्मलीन है ना, और ब्रह्मलीन होने का अर्थ है ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप में, और ब्रह्म सबकी आत्मा है, सबकी अंतर आत्मा है, तो एक व्यष्टि शरीर से मुक्त पुरुष ब्रह्मलीन होकर के सबके अंतर आत्मा बनकर के और सबके भीतर में श्रद्धा का केंद्र बनकर के उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति की, और आज इतनी सुंदर ज्ञान गंगा निरंतर जो यहां प्रवाहमान है चल रही है, ये उन महापुरुष की कृपा है कि नहीं? माया नगरी को ब्रह्म नगरी तो बना दी महाराज, आप जाओ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी में, जो विद्वानों की नगरी मानी जाती है, कहीं ऐसा स्वाध्याय मिलता हो 365 दिन, ऐसा सत्संग मिलता हो वेदांत का 365 दिन? न करने वाले मिलेंगे न सुनने वाले मिलेंगे, भूत बंगले जरूर मिल जाएंगे, हां जो कुंभ में भरेंगे, अवसर विशेष पर भरेंगे, पर यह है 365 दिन जहां अनवरत साधना चल रही है, निरंतर साधना होती है। बहुत लोग हैं जिनको सुनने को नहीं मिलता है, तो भाग्यशाली है कि हम लोग यहां पर नित्य निरंतर इसका आनंद ले रहे हैं। श्रवणाया भी बहुभिर यो न लभ्य है, बहुत लोग हैं जिनको श्रवण करने के लिए भी प्राप्त नहीं होता है। श्रवंतो भी बहुओ यम न विद्यु, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو سن رہے ہیں سبھی کے سب اس کو جان لے وے. بہت لوگ ہیں جو سن کر کے بھی نہیں جان پاتے, ان میں سے کوئی انہیں گنے لوگ ہوں گے, آشچریہ روپ ہوں گے, وہ تو آشچریہ وکتا کشلو سے لبدھا, اس کو بتانے والے بھی دردب ہیں تو گرہن کرنے والے بھی دردب ہیں, کوئی ایک ہوگا. بھگوت گیتا کو آپ دیکھو, بھگوت گیتا میں تین ویکتی ہے, ایک ایسا ویکتی ہے جس کو سننے کو ہی نہیں ملا, ایک ویکتی ہے جو سنا پر سمجھا نہیں, اور ایک بھاگیہ شالی ہے جس کو بتانے والا کوئی مل گیا اس کے لائق, دونوں ہی آشرے روپ ہے. دریودھن بھی گیتا میں اس کا تھوڑا سا انش آتا ہے. آپ دیکھو گیتا میں یہ 700 شلوک کی گیتا ہے اور وہاں پر لکھتے ہیں جو بولتا اس کے پہلے اوواچ دھرتراشٹر اوواچ بھگوان اوواچ سنجے اوواچ ارجن اوواچ جو بولتا اس کے پہلے اوواچ شبد کا پریوگ کروایا ہے. دھرتراشٹر نے کتنے شلوک بولے؟ ایک شلوک بولا. اور دریودھن بھی کہیں بولتا ہے کیا گیتا میں؟ نہیں بولتا. دھیان سے پڑھنا, 9 شلوکوں میں دریودھن بولتا ہے, 9 شلوک بولے ہیں دریودھن نے. درشٹوا تو پانڈوا نیکم ویوڈھم دریودھنستدا آچاریہ مپسنگم میں راجا وچن ابرویت. پانڈووں کی سینا کو دیکھ کر کے راجا دریودھن آچاریہ کے اپسنگم میں دروڑ کے پاس میں گیا ہے, وچنم ابرویت, یہ وچن کہے ہیں دریودھن نے. کون سے وچن کہے؟ پہلے ادھیائے کا تیسرے شلوک سے لے کر کے 11 شلوک تک. پشیتام پانڈو پترانام آچاریہ مہتیم چموم, یہ کون بول رہا ہے؟ دریودھن بول رہا ہے. اور 11 شلوک میں جا کر کے کہا, ہاں بھونت سرو وہی, آپ سب کے سب وہ پتامہ بھیشم کی رکشا کرنا, وہاں تک آدیش دیا ہے آچاریہ درون کو بھی. 9 شلوک میں بولا ہے دریودھن, لیکن وہاں پر ویاس جی نے دریودھن وہ واچر شبد کا پریوگ نہیں کیا ہے. وہ کن کا پرتیک ہے؟ شرونایا پی وہ پھر یو نلبھی ہے, جن کو سننے کو ہی نہیں ملتا. کیوں؟ ارے سننے کو مل تو سکتا ہے پر مہتو نہیں دے پا رہا. جب بھگوان شری کرشن اس رنانگن میں دونوں طرف سینا کھڑی اور بیچوں بیچ کھڑے اور ارجن کے کان میں کچھ بول رہے ہوں گے تو دریودھن بھی تو سوچ سکتا تھا کہ نہیں پتا نہیں کیا منترنا ہو رہی ہے. ارے کوئی ایک دوسرے کی نندا ہوتی تو دیوار کے کان چپکا لیتے ہیں لوگ, بات میری ہو رہی ہے. جو نہیں سنتا وہ بھی سننے لگ جاتا, یہ کوئی بہرا مہاتما تھا ہریدوار میں, کبھی اس کی کوئی چرچا ہوتی تو کہتا کہ میرے لیے کچھ کہہ رہے ہو, بڑا دھیان سے سنتا. اور اس سے کوئی کام کی بات پوچھنی ہو, کچھ کام کروانا ہو, کچھ کہنا ہو, سنتا نہیں ہو. کام کی بات سنے گا نہیں اور نہیں سننے کی سنے تو بڑی کام کی بات ہو رہی تھی. بھگوان کرشن ارجن کو سنا رہے ہیں تو دریودھن تو بہرے کی طرح ہے, اندھے کے بہرا ہو گیا دیکھ لو آپ. وہ سوچ ہی نہیں رہا کہ کوئی میرے کام کی بات ہو سکتی ہے کیا. کتنے لوگ ہوں گے یہاں سے نکل کر کے جاتے ہیں, کبھی سوچا کہ پریم پوری میں کہیں ہماری بھی کتھا ہو رہی ہوگی, ہمارے کام کی ہوگی؟ نہیں ہوتے. دریودھن کے پرتیک ان کے متر گن ہے. پرشنمنتو بھی بہو یو اپنے ودیو, آچاریہ اسی پنکتی کو یہاں پر لے رہے ہیں, شلوک میں لیا ہے. بہت لوگ ہیں جو سن کر کے بھی جس تتو کو جان نہیں پاتے. گیتا تو سنجے کے مادھیم سے دھرتراشٹر نے بھی شرون تو کی ہے, پر پوری کی پوری گیتا سننے کے بعد دھرتراشٹر کو کوئی تھوڑا بہت پریورتن آیا جھوں بھی رہیں گی. کیا دھرتراشٹر نے سنجے کو تھینک یو بولا؟ ایک تھوڑا سا کوئی راستہ بتا دے اس کو بھی کہتے ہیں بھائی صاحب تھینک یو. पूरी गीता सुन ली धृतराष्ट्र ने एक शब्द नहीं बोला। असली अंधा है कि नहीं बताओ, पूरी गीता सुनी और परिवर्तन कुछ नहीं आया। यह है प्रतिबंध, देख लो आप। श्रवणंतो भी बहु ये हमने विद्यु, सुन करके भी उसको होश नहीं हुआ है कि अब मेरे कर्तव्य कर लेना चाहिए, मुझे न्याय पर चलना चाहिए, होश नहीं हुआ। आखिर महाभारत का युद्ध हो गया और वही गीता भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन ने श्रवण की। आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, गीता सुनते सुनते ही अर्जुन का प्रतिबंध हट गया। एक प्रतिबंध आया था, अर्जुन ने कहा नहीं उत्सेति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिं बभूव, युद्ध नहीं करूंगा। और आखिर में गीता सुनते सुनते ही उसका मोह भंग हुआ और अर्जुन कह रहा है करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, जो आप कहेंगे करूंगा। क्यों? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन कह रहा था कि जो मुझे मोह हुआ है, जिसके चलते मेरा मुंह सूख रहा है, नहीं प्रपश्या में ममापनोद्यादि चोक मुच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा व सपत्न मृदम राज्यम सुराणाम अभी चाधिपत्यम। महाराज मुझे इस पृथ्वी के ऊपर तो क्या त्रिलोकी में ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके चलते मेरा शोक मिट जाए। देवताओं का आधिपत्य मिले तो भी शोक मिटेगा नहीं। अर्जुन का निश्चय था, एक जबरदस्त प्रतिबंध आ रहा था, शोक निवृत्ति का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन एक कुशल वक्ता मिले और कहता है स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति मिल गई, क्योंकि अर्जुन का यही प्रतिबंध हट गया तो उसको लाभ हो गया। वही बात यहां पर उस मंत्र को लेकर के बहुत सुंदर उद्धरण दिया है, श्रवंतोपि अत्र बहुओ यन्न विद्युरिति श्रुति ही। ऐसी श्रुति है कि ज्ञान यहां भी हो जाए वहां भी हो जाए। बहुत लोग हैं पहले बात तो सुने ही नहीं, तो ज्ञान यहीं भी नहीं होगा, तो सुनने वाले को हो जाएगा। बोले नहीं, श्रवंतो अपि, सुनने वालों को भी, जो सुना है उसको भी हो जावे। पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी होता, उसका कारण क्या? वो प्रतिबंध ही कारण है। सुन रहे हैं तो बहुत क्यों नहीं होता, प्रतिबंध उसमें कारण होता है। सती प्रतिबंधे यह जन्मनी ज्ञानानुत्पत्त हो श्रुतिम दर्शयति श्रवंत इति। सती प्रतिबंधे यह जन्मनी ज्ञान अनुत्पत्त हो, प्रतिबंध के होने पर यह जन्मनी, इस मनुष्य जन्म में ज्ञान अनुत्पत्तौ, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। प्रतिबंध के होने पर इस जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इस बात को श्रुतिम दर्शयति, श्रुति के द्वारा श्रुति दिखा रही है। श्रवंतो विभवो यम न विद्यु, ये जो श्रुति जिस पर विचार किया अभी, यही बता रही है कि सुन रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा तो प्रतिबंध है। इसका अर्थ ये मत करना कि फिर ज्ञान तो हो ही नहीं रहा है, मुझे तो प्रतिबंध ही लगता है, तो फिर काय को मथा पच्ची करेंगे, प्रतिबंध हटेगा तब जाकर के साधना कर लेंगे। साधना करते करते ही प्रतिबंध हटता है, साधना करते करते ही रुकावट हटती है। यदि साधना करेंगे नहीं तो प्रतिबंध कैसे हट जाएगा? प्रतिबंध क्या है ये सोचो, किसका फल है प्रतिबंध? प्रतिबंध उपस्थित कौन करता है, यूं समझ लो आप, किसने खड़ा किया, रुकावट किसने खड़ी की? यदि प्रतिबंध किसी दूसरे के द्वारा खड़ा किया गया है तो उस प्रतिबंध को हटाना हमारे वश का खेल नहीं है। यदि प्रतिबंध और ने किया हो तो हम कैसे हटा देंगे भाई? इसका अर्थ है कि अगर प्रतिबंध हटता है तो कहीं हमारा ही बनाया हुआ है, और जो हम हैं हमारे में प्रतिबंध उपस्थित करने की जो शक्ति थी, सामर्थ्य था, उससे ज्यादा शक्ति सामर्थ्य उस प्रतिबंध को तोड़ने में लगाना पड़ेगा। हाँ, वो प्रतिबंध जिस निमित्त से खड़ा हुआ है वो कर्म ही तो निमित्त है, कर्मों के कारण ही तो प्रतिबंध होता है, और वो कर्म भी हमारे से ही हुए हैं। तो जो प्रतिबंधात्मक कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ी रुकावट, एक बाधा उस ज्ञान के प्रति खड़ी कर दी, अब यदि हम उससे ज्यादा कहीं साधना करके, श्रवण मनन आदि साधन करके और प्रबल कर्म कर डालते हैं, तब उस प्रतिबंध को हटाने के लिए हमारी जो प्रबल साधना है वो उसको तोड़ने में समर्थ हो जाएगी, उसको हटा पाएगी, उसको बाधित कर देगी। क्योंकि जो प्रतिबंधात्मक कर्म वो पहले का है, और प्रतिबंध को हटाने के लिए जो साधना अभ्यास विचार रूपी कर्म होगा वो हमारा वर्तमान का होगा। पहले वाले को इतना दबा दो, इतना दबा दो, कोई एक ड्रम है उसमें आपने पहले से गेहूं भर करके रखा है, और उसके ऊपर यदि आपने मक्का डाल दी, चना डाल दिया, चावल डाल दिए, दाल डाल दी, तो अब उस जो नीचे आप पड़ा हुआ जो गेहूं का बीज है, दाना है, वो किससे आवृत हो गया? ऊपर जो साधन हमने डाला उससे आवृत हो गया। अब जब निकालेंगे तो पहले कौन निकलेगा? ऊपर से डाला गया वही तो निकलेगा। तो पहले के प्रतिबंधात्मक जो हमारे कर्म है वो जब फल उपस्थित करता है तो उसको दबाने के लिए हमारा साधना रूपी विचार रूपी प्रयत्न इतना प्रबल होना चाहिए, इतना प्रबल होना चाहिए कि वो दब जाए और हमारा जो वर्तमान कर्म है वो उसके ऊपर आकर के बैठ जाए, हमारी साधना बैठ जाए। हो सकता है प्रतिबंध हट जाए और हमें साक्षात्कार हो जाए, और इतना करते भी नहीं होता है तो प्रतिबंध अति प्रबल होगा। पहले बहुत ज्यादा ही ऐसे कोई कर्म होंगे जिसके कारण रुकावट है, तो आगे चल करके हो जाएगा। इस बात को ही यहां पर सिद्ध किया गया है। सति प्रतिबंधे यह जन्मने ज्ञाना ज्ञान अनुत्पत्तौ श्रुतिम दर्शयति। उस श्रुति को यहां पर दिखाया गया है कि प्रतिबंध के होने पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, वही श्रुति है श्रवंतो विभवो यमने विद्यु, यह करके यहां पर बताया गया है। इसमें नहीं है, एक नीचे टिप्पणी भी दी है, देखना चाहेंगे क्या? पूर्वतन सूत्रेण श्वेत केतु प्रति सांदोग्य षष्ठे उद्दालक कर्तृक नवराप क्या अपवाद विहित विचारा आवृत्या तावद अद्वैत ब्रह्मात्मे क्या अपरोक्ष ज्ञान प्रस्तुत प्रतिबंधे वर्तमानादि प्रतिबंधा भावे सति एकम अपि यह अस्मिन् शरीरे भवम् तथा अपि न जन्मांतरे अव्यहितम एव भविष्यति इति आशयः। अच्छा, बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। इन्होंने कहा कि अहेकम अपि ज्ञान यहां भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? बार बार प्रयास करो, प्रयत्न करो, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को महर्षि उद्दालक ने 9 बार तत्वमसी महावाक्य का उपदेश दिया है। बार बार विचार करता रहा, बार बार विचार करता रहा, तो श्वेत केतु को प्रतिबंध हट गया और उसी जीवन में उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। यही कम अपी यहां भी हो सकता जैसे श्वेत केतु को हो गया, और न भी हो जैसे वामदेव ऋषि को मां के गर्भ में जाकर के हुआ, ऐसे भी तो हो सकता है, संभव है। तो उसी को बताने के लिए था ये, तो कि सुन करके भी अपी शब्द क्यों आया है? इसलिए आया कि सुन करके ज्ञान हो ही जाए जरूरी नहीं है, और सुन करके ज्ञान न भी हो यह भी जरूरी नहीं है, हो भी जाए न भी हो, इसको बताया। यह जन्म ने श्रवणादि कर्तु जन्मांतरे अपरोक्ष ज्ञानम भवति इति अत्रापि गर्भेनुसन नन एवं एषाम वेदमहम देवानाम जनिमानि विश्वा इत्यादि काम श्रुतिम अर्थतः पठति। जो बात मैं आपको बता रहा था वो यहीं आ गई, इस यह जन्म ने श्रवण आदि करतु, इस मनुष्य जीवन में श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जो करने वाला साधक है उसको जन्मांतरे अप्रोक्ष ज्ञानम भवती। साधन तो यहां किया है और अप्रोक्ष ज्ञान जन्मांतर में होगा, आगे जाकर के ज्ञान होता है। इसको सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि अत्रावि गर्भेनु सन एव एषाम वेदम अहम देवानाम जनिमाने विश्वा। गर्भ में रहते हुए ही वामदेव ऋषि कहते हैं एषाम देवानाम विश्वा जन्माने अहम वेद, इन देवों के संपूर्ण जन्मों को हमने जान लिया है। वहां जाकर के उसको बोध हुआ इत्यादि काम श्रुति में अर्थ पड़ती। इस प्रकार की जो ऐत्रेय श्रुति है उसको यहां पर अर्थपूर्वक पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर लें, पांच सात मिनट है। गर्भ एव शयान सन वामदेवो व बुद्धवान पूर्वाभ्यस्त विचारेण यद्वद्धेनादिशो। गर्भ एव शयान सन वामदेवो अवबुद्धवान पूर्वाभ्यस्त विचारेण यद वद अध्ययनादिषु। बहुत सुंदर लौकिक उदाहरण भी और शास्त्रीय उदाहरण भी, दोनों ही उदाहरण दिए यहां पर। शास्त्रीय प्रमाण तो दिया है कि गर्भ में शयन करता हुआ ही वामदेव ऋषि है, उनको अवबुद्धवानी ज्ञान हुआ है, बोध प्राप्त हुआ है, गर्भ में रहते रहते ही उन्होंने जान लिया है जो ऊपर की श्रुति आपको बताई। अब वहां मातृ गर्भ में कौन सी साधना हुई है भाई, कोई साधन नहीं किया वहां तो। पर इतने वो कहा समय संबंधी प्रतिबंध था, इसलिए वो प्रतिबंध वहां जाकर निवृत्त हुआ और पूर्व जन्म में जो की गई साधना थी जिसके कारण उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, निश्चय हो गया। बोले ये कैसा साधना, तो यहां की आज की अभी किया, वहां कुछ साधना नहीं की, वहां जाकर के ज्ञान हुआ, तो इसके बीच में जो समय का गैप हुआ उसका कारण क्या है? साधना और बोध उनके बीच में जो गैप रहा, अंतराल हुआ, उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण कुछ भी नहीं, लोक में ऐसा हो जाता है, प्रतिबंध ही कारण है, एक रुकावट ही कारण है। उसका अच्छा उदाहरण देते हैं, पूर्वाभ्यास्त विचारेण यदवद अध्ययनादिशु। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले जो अभ्यास किया गया है उसको बीच में विस्मृत हो गए, भूल भी गए, अध्ययन आदि की हुई वस्तु याद नहीं रहती है, जब याद करना चाहते थे उस समय भूल जाते रहे हो, लेकिन उस समय का जो किया हुआ अभ्यास है बाद में वो चीज अपने आप याद आ जाती है। कभी कभी कल का कोई रात्रि का विषय था, कोई पढ़ते पढ़ते सो गए, उस समय वो याद ही नहीं हो रही थी। हमको प्राय कहा करते थे गुरुजन कि भाई शाम को पढ़ करके सो जाओ और सुबह उठकर एक बार दोहरा लो, तुमको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत उस समय वर्ती अच्छी रहती है। तो कभी वर्ती चंचल है, कोई चीज स्थिर नहीं होती मस्तिष्क में, कभी ठंडे मस्तिष्क में वो चीज दिमाग में आ जाती है, प्रतिबंध हटा उसकी याद आ गई। अब कल रात्रि को भजन संध्या थी ना यहां, तो गायक जो थे पता नहीं अब कौन सी फिल्म का गीत गाया, क्या गाया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आई, इसलिए कि मैंने मेरे जीवन में कभी कोई फिल्म देखी नहीं, बिल्कुल जंगली आदमी हूं, कोई फिल्म देखी नहीं, आज तक नहीं देखी, और एक फिल्म का गाना याद नहीं। अब मैं कैसे समझ लूं कि वो फिल्म का है फलाना, वो तो चर्चा कर रहे थे तो बात समझ में आई, पर जब वो फिल्म का गीत गा रहे थे मुझे कोई एक अच्छी पंक्ति याद आ रही थी उसको सुन करके, क्योंकि मैंने वैसी चीज सुनी। करीब जब मैं सातवीं क्लास में पढ़ता था तो स्कूल में एक वो 26 जनवरी का ऐसा कोई प्रसंग था तो एक नाटक किया था और उसमें श्रवण कुमार का नाटक हुआ था। तो श्रवण कुमार को दशरथ जो बाण मारते हैं और जो मरने लगता है तो तड़पते हुए वो सरयू नदी से पूछता कि मेरा अपराध क्या है। तो उस नाटक में वो बाण मारने का मौका मुझे मिला था, मुझे दशरथ बनाया गया था। तो जब मैंने बाण मारा तो फिर वो तड़पता हुआ श्रवण कुमार गाने लगा, हाय ये जालम जालिम मैंने क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पे मारा। तो वो गा रहे थे तो मुझे वो उस समय हमारे वो शिक्षक जो श्रवण कुमार बने हुए थे वो विलखते हुए गंभीर स्वर में गा रहे थे, मुझे तो वो चीज याद आ रही थी। अब बताओ कितने समय की बात, पुरानी और कल ताजा हो गई एकदम, ये होता है कि नहीं? तो इसलिए इतना बड़ा अंतराल गया उस समय की बात और यहां जाकर के प्रतिबंध हटा, कोई न कोई फिर वो बात याद आ गई और निष्ठा बन जाती है। वही चीज यहां पर कह रहे हैं, पूर्वाभ्यस्त विचारेण यदवत अध्ययनादिशु, अध्ययन आदि में जैसे पहले किया हुआ विचार होता है और वो उस समय तो याद नहीं होता लेकिन बाद में वो चीज स्मृति में आ जाती है। अर्जुन को क्या हुआ ये भी कहता कि स्मृति, और हमको भी जब भी होगी स्मृति ही होगी, विचार करते करते आत्मा स्वरूप की अहम ब्रह्मास्मि की स्मृति ही तो होनी है। विचार करने से मैं जीव ब्रह्म बन जाऊंगा ये तो सोचना भी मत, यदि स्वरूपतः जीव जीव ही है और उसका स्वरूप ब्रह्म नहीं है, आप लाख विचार करो जीव ही रहोगे। और यदि विचार करते करते यह अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूं तो ये इस बात को मान तो लेना चाहिए कि मैं आज भी ब्रह्म ही हूं, कुछ की अनुभूति प्रतिबंध हटने पर हो जाएगी। ब्रह्म तो आज भी हूं ही हूं, अनुभूति नहीं हो रही है उसका कारण है प्रतिबंध है। बार बार विचार करते रहो, जो ही प्रतिबंध हटेगा अनुभूति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।